ఓం శాంతి. ఆజ్ కా దిన్ బడా శుభ దిన్ హై. సత్గురువార్ భీ హై, శ్రీ కృష్ణ జన్మాష్టమి కా దిన్ భీ హై, ఔర్ దాదీ జీ కా విశేష స్మృతి దివస్ హై. जैसे कहते हैं कभी कभी शुभ ग्रह इकट्ठे होते हैं तो वो बहुत शुभ होता है. ये तीन ग्रह एक साथ इकट्ठे हुए हैं. सभी भाई बहने जो खास इस समय यहां पर उपस्थित हैं, मैं जानता हूं कि सभी कभी ना कभी दादी जी के नजदीक आए होंगे, संपर्क में आए होंगे, उनको सुना भी होगा, उनके समीप आकर के उनसे बात भी की होगी और उनसे वो रूहानियत भरी, प्यार भरी दृष्टि और साथ में उनकी जो एक बहुत मीठी मुस्कान, उसका अनुभव किया होगा. मेरा दादी जी के साथ दीपावली 1959, उस समय से उनसे मैं व्यक्तिगत परिचित हुआ. बॉम्बे में रहते थे और इंडियन नेवी में सर्विस करते थे. मैं तो दादी जी खास साकार बाबा के निमंत्रण पर उस समय बॉम्बे आई थी, क्योंकि साकार बाबा सर्दियों में 3 महीना के लिए बॉम्बे अधिकतर और या दिल्ली में जाकर के सेवा के निमित्त बनते थे, क्योंकि माउंट आबू में बहुत ठंडी होती थी. तो दीपावली का समय था, बाबा ने खास दीदी मनमोहिनी को और दादी जी को, दादी प्रकाशमणि को बॉम्बे बुलाया और बॉम्बे जब वो आई तो उस समय से लेकर के बिगनिंग ही ऐसी हुई थी. दोनों को बाबा एक दिन बड़ी प्यार से दृष्टि दे करके और रूहानी नशे में कहो, सेमी ट्रांस में कहो, उनको ऐसा अनुभव करवा रहे थे. और मैं बाहर से कहीं से कुछ कारोबार से, जैसे बाबा ने कहा था वो करके लौट के आया तो देखा कभी दादी बाबा का हाथ पकड़ के थोड़ा धीरे धीरे ऐसे हाथ हिला के रास कर रहे हैं, कभी दीदी उनके साथ रास कर रही है. मेरे समझ में नहीं आया. मैं एक खिड़की के पास खड़ा हो गया देखने के लिए भी क्या हो रहा है. तो उसी नशे में दादी, ट्रांस के नशे में ही धीरे धीरे रास वाले हाथ हिलाते हिलाते आके मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे धीरे धीरे जैसे छोटे बच्चे को खिलाते हैं इस तरह से रास कराना शुरू कर दिया. इस तरह से दादी जी के साथ बहुत एक क्या कहें स्नेहपूर्ण संबंध शुरू हुआ. जितने दिन दादी जी उस समय वहां पर थी अपने बॉम्बे के अंदर, तो उनकी क्लास का भी लाभ लिया हमने, मेडिटेशन का भी लाभ लिया, और फिर उसके बाद ऐसा संबंध जुटा जो बाबा की आज्ञा अनुसार मैं अपनी 2 महीने की छुट्टियां जब जयपुर में बिताता था तो गर्मी के दिनों में ही दादी जी बाबा से पटना से मिलने आती थी। उनके साथ में वहां के एक बहुत बड़े व्यापारी स्टील का जिनका बिजनेस था जलान बाबू करके, उनका पंडा बन के आती थी। आते जाते जयपुर में उनका रुकना होता था तो कभी मधुबन में कभी जयपुर में मिलते रहे। और फिर 1964 में जब पहली प्रदर्शनी बॉम्बे में बन रही थी उस समय रमेश भाई, उषा बहन, हमारी दादी शील इंद्रा, दादी रतन मोहिनी, अनिला बहन डॉक्टर रमेश भाई की बड़ी बहन, और साथ में एक दो और भी साथी थे। हम लोगों की आपस में मीटिंग हुआ करती थी प्रदर्शनी याद बनाने के लिए। दादी पुष्प शांता हम सबका बहुत ध्यान रखती थी कि इतनी ये दिमाग की मेहनत करते हैं तो इनको ठीक से खाना वाना ठीक से खिलाना चाहिए। उन्हीं दिनों में बाबा ने जगदीश भाई को और दादी जी को खास निमंत्रण देकर के बॉम्बे में बुलाया और दादी जी ने आकर के प्रदर्शनी की जो कारोबार चल रही थी नए नए चित्र बनाने की, उसमें जगदीश भाई और दादी जी ने मिलकर के मेडिटेशन से संबंधित जो चित्र थे वो इन्होंने बनवाए। और फिर जब प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ तो उस समय का समाचार बाबा के पास आया तो बाबा ने बहुत प्यार से दादी को कहा अभी थोड़ा बॉम्बे में रहो। तब से लेकर के 1964 से दादी जी बॉम्बे में थी और उसी समय फिर रमेश भाई, अनिला बहन निमित्त बने थे गामदेवी सेंटर खुलवाने के। तो पहले दादी जी कोलाबा सेंटर पर दादी पुष्प शांता जी के साथ थी और बाद में गामदेवी सेंटर पर रहने का शुरू हुआ। मैं बॉम्बे में ही पूरा सेवारत था क्योंकि मैं अपना जॉब छोड़ करके, और फिर मुझे बाबा ने सेवा के लिए बॉम्बे में रखा था। तो सुबह का क्लास दादी के पास गामदेवी में और फिर सारा दिन जो बाबा की तरफ से यज्ञ की सेवाएं होती थी उसमें दादी जी के गाइडेंस से आर्टिस्ट का काम हो, प्रिंटिंग का काम हो, कोई खरीदारी का काम हो, इन सब बातों में सब वो पूरा करके फिर दिन को आके दादी जी के पास पहुंचता था। उस समय निमू बहन भी थी, एक और सरोज बहन करके भी थी वहां। कभी कभी ऐसा होता था कि मुझे देर हो जाती थी तो बहनें, छोटी बहनें भोजन करके थोड़ा रेस्ट करती थी और मैं जब पहुंचता था घंटी बजाता था तो दादी जी उठ करके आके दरवाजा खोलती और फिर सब्जी वगैरह गरम करके ताजी ताजी रोटी बना करके खिलाती। इस तरह से अपने जैसे छोटे भाई का ध्यान रखते हैं, प्रैक्टिकल में दादी जी ने ऐसी पालना, फिजिकली भी मैं तो कहता हूँ पालना दी, और उसके साथ साथ दादी जी जैसी मुरली सुनाना, मम्मा से दूसरा नंबर उनका ऐसे माना जाता है कि उनके जैसी मुरली कोई सुना नहीं पाता है। तो मुरली सुन कोई उसके अंदर अपने मन मत की बात कभी दादी मिक्स नहीं करती थी। जो महावाक्य बाबा के जैसे उनको एकदम स्पष्टता से बहुत अच्छे प्यार से सुनाती थी और सबको बहुत रिफ्रेश कर देती, उसकी रिजल्ट क्या मिलती कि सभी के अंदर दादी जी के लिए बहुत प्यार। तो ये तो बातें हैं शुरू शुरू की, और फिर इसके साथ में दादी जी के अंदर जो विशेषताएं थी उनको ध्यान में रखते हुए बाबा खास उनको निमित्त बनाता था। जैसे कोई बड़ा प्रोग्राम हो तो उसमें दादी जी का भाषण हो, दादी जी भाषण में क्या बोलें, उनकी क्या मेन पॉइंट है, वो खास बाबा कभी टेप भर के भेजता था, कभी लिख करके भेजता था, और दादी जी उनको पढ़ करके उनको देख करके उसके बाद भाषण जो करती थी बहुत पावरफुल भाषण होता था। और साथ साथ बॉम्बे में, बॉम्बे एक ऐसी जगह जहां पर आपको पता है सभी धर्मों के लोग वहां मिलते हैं, सभी वर्गों के मिलते हैं, और सबसे ज्यादा तो सभी जानते हैं कि वो किस चीज का कैपिटल है, इकोनॉमिकल कैपिटल है। तो वहां व्यापारी वर्ग के लोग बहुत मिलते हैं। तो कुछ ऐसी घटनाएं घटी, प्रदर्शनियां जो की, तो उस समय प्रदर्शनियों के द्वारा बहुत अच्छे अच्छे व्यापारी, बहुत अच्छे अच्छे वो पॉलिटिशियंस, वो सब आते थे। दादी जी उनकी सेवा बहुत प्यार से करती, और उनकी जो सेवा होती थी उसके फलस्वरूप दादी जी के प्रति उनकी भावनाएं बहुत 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 अच्छी बन जाती थी, जिसके फलस्वरूप बॉम्बे के अंदर सेवा का बहुत प्रसार हुआ, बहुत जल्दी जल्दी सेवा आगे बढ़ती गई। दादी जी के पास एक विशेष दूसरी बात थी ईश्वरी परिवार को संगठित रखने की। उनके स्नेह के फलस्वरूप जिस तरह से हर एक व्यक्ति को अनुभव होता था कि बाबा ने मुझे जितना प्यार दिया उतना और किसी को नहीं दिया, हूबहू बाबा के समान, बाबा के फुटस्टेप्स पर कहो, बाबा के पूरा एक प्रतिमूर्ति कहो, दादी जी ने भी हर एक भाई और हर एक बहन को इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, जो आज दिन तक जिसको भी दादी ने कभी एक दो शब्द बोले होंगे या एक कोई हाथ मिलाया होगा या उनको टोली खिलाई होगी, वो भाई बहने कभी भूलते नहीं हैं। और मैं समझता हूँ आप में से भी कई होंगे जिन्होंने दादी जी से ऐसी पालना ली हुई है। एक प्रकार से ईश्वरी परिवार की पालना का जो कार्य जितना दादी जी ने निमित्त बन करके बेहद में किया, उसके जैसी मिसाल और कोई नहीं है। आज भी दादियां ऐसे कर रही हैं, लेकिन परिवार और बड़ा होता गया है। सबको जैसे दादी ने पालना दी शायद वो ना भी मिल सके, ये भी मैं जानता हूं, लेकिन समय समय की बात है। और दादी जी के लिए कुछ और बातें जो मेरे मन में हैं, कि एक चीज आप सोचिए, जितने भी भारत के अंदर और मठ पंथ जो भी हैं या जो संत महात्माएं हुए हैं, जब एक संत ने शरीर छोड़ा तो उनका जो मुख्य शिष्य है वो गद्दी पर बैठता और बाकी जो शिष्य साथ वाले वो अपना अपना जाकर के आश्रम अलग खोल करके उनकी अपनी वो फिलॉसफी, उनकी अपनी पद्धति, उनकी अपनी किताबें वो सब शुरू की। दादी जी की ये विशेषता जो हम सब ने अच्छी तरह अनुभव की कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय को उन्होंने ऐसा प्यार से एक सूत्र में बांध के रखा कि आज दिन तक भी कभी ये नहीं हुआ कि ये फलानी दादी का सेंटर है, ये फलानी दादी का सेंटर है, ये फलानी दादी का सेंटर है, ऐसा नहीं है। सभी के मन में एक ही भावना डाली, ये सब बाबा के सेंटर है। तो इस तरह का जो एक विशेष, मैं कहूंगा कि इस यज्ञ की विशेषता आज भारत में तथा विदेश में गिनती करना मुश्किल है। कोई कहता है 8,500 सेंटर है, कोई कहता है 9,500 सेंटर है, कोई कहता है 10,000 सेंटर है, लेकिन कितने सेंटर होंगे आपको पता है? आपका घर भी सेंटर है। जहां पर बाबा के बच्चे रहते हैं वहां बाबा का ज्ञान का हमेशा प्रचार होता ही रहता है। चाहे रिश्तेदार कोई आते हैं, चाहे कोई मिलने के लिए आते हैं, कोई भी कारणवश। तो आज देखिए कि इस तरह का इंस्टीट्यूशन दुनिया में कोई नहीं है जिसको दादी जी के क्या कहें मार्गदर्शन में इतने तक बढ़ावा दिया गया। दादी जी के होते ही इतने सेंटर्स हुए और उनके बाद जो हमारी बड़ी दादियां हैं, दादी रतन मोहिनी है, गुलजार दादी है, जानकी दादी है, जो उस समय की प्रथा चल रही है, जो उस समय के बातें चल रही हैं, और हमारी यहां पर जो निमित्त बहने हैं, हमारी मोहिनी बहन है, मुन्नी बहन है, शशि बहन है, दूसरी उषा बहन है, गीता बहन है, डॉक्टर निर्मला बहन है, जो भी बहनें निमित्त बनी हुई हैं, सभी उनके मन में एक ही बात रहती है कि हमें जो दादी जी ने मार्गदर्शन दिया उसको हम ध्यान में रख करके इस यज्ञ की सेवा करें और इसमें सभी भाई बहनों को एक सूत्र में बांध रख करके रखें ताकि संगठन की जो शक्ति है वो और बातों में नहीं है। तो ये एक विशेष दादी जी का जो गुण कि सारे ईश्वरी परिवार को एक सूत्र में बांध के रखा, सबको बाबा के गले की माला का मणका बना दिया, ये दादी जी की विशेष सेवा हम सबको बहुत गौरवान्वित करती है। जब हम इस तरह की बात सोचते हैं तो गौरव से सिर ऊंचा हो जाता है कि दादी जी ने इतना अच्छा मार्गदर्शन हम बच्चों को दिया। फिर इसके साथ में विशेष बात एक कि जब विदेश की सेवाएं शुरू हुई, दादी जी भी खुद विदेश होकर के आई और विदेश के भाई बहने भी आने शुरू हुए। आप जानते हो भारत का रहन सहन, भारत का खान पान, भारत की सभ्यता, भारत की रीति रसम सब अपने हैं। विदेश के भाई बहने वो इन सब बातों के अंदर ढल जाएं, कितना कठिन होगा उनके लिए। लेकिन सभी ने देखा गया कि जब दीदी जी के, दादी जी के जानकी दादी जी के व अन्य दादियों के संपर्क में वो लोग आए और उनको भी वो ईश्वरी प्यार मिला। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मण जीवन को अपना जीवन बना लिया। आज इतने सेंटर्स हैं विदेश में, कहा जाता है 140 देशों के अंदर बाबा के सेंटर्स हैं और उसमें विदेशी भी चला रहे हैं। वो सारे सेंटर्स की पद्धति जो है, जो रूटीन है, जैसे यहाँ रूटीन है हेडक्वार्टर की, वही सब की रूटीन अपने हर एक सेंटर की चलती है। सुबह का मेडिटेशन है सब जगह पर, अमृत वेले का मेडिटेशन। यहाँ की मुरली सब जगह पर वही मुरली चल रही है इस समय। जो खान पान के बारे में जितना परहेज, यहाँ सभी उसी हिसाब से अपना परहेज रखते हैं। जैसे यहाँ पर गुरुवार के दिन भोग लगता है, सब अपने अपने स्थान पर भोग लगाते हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए कि ये सचमुच प्रैक्टिकल में नए विश्व का एक नया सिस्टम बन गया है, और वो नया विश्व एक विश्व होगा, वो प्रैक्टिकल हम देख रहे हैं। उसके लिए खास दादी जी को, खुद भी बाहर गईं और उसके साथ साथ जब भाई बहनें आने शुरू हुए उस समय से लेकर के दादी जी के दिल में खास ये बात रही कि चाहे ये कहां से भी हैं, किस भी बैकग्राउंड के हैं, लेकिन इन्होंने बाबा को देख लिया, बाबा को पहचान लिया और बाबा की श्रीमत को जान लिया, श्रीमत को पहचान लिया और अपने जीवन में उसको अप्लाई किया है। ऐसे भाई बहनों को कितना प्यार मिलना चाहिए, कितना उनको दुलार मिलना चाहिए, कितनी इनकी खातरी होनी चाहिए, तो बहुत ध्यान रखा गया उसका। दादी जी की विशेष कुछ बातें ऐसी भी हैं, दादी जी को स्टूडेंट लाइफ बहुत अच्छी लगती थी। साकार बाबा के दिनों में मम्मा की या बाबा की मुरली चलेंगी तो दीदी दादी अपनी नोटबुक लेकर के नोट्स लिखेंगी। कभी भी एक बार भी उन्होंने वो क्लास मिस नहीं किया होगा, नोट्स लिखेंगी जरूर, फिर आपस में रू रुहान करेंगी। और स्टूडेंट लाइफ जो ईश्वरी विद्यार्थी जीवन है, उसके लिए इतना उनके मन में उमंग रहता था। और जब ये खास पांडव भवन में शुरू में दादी जी के सानिध्य में भट्टियां शुरू हुई, भट्टियों में कभी भाइयों की भट्टी, कभी बहनों की भट्टी, छोटे ग्रुप होते थे, उन भट्टियों के अंदर भी इस तरह का माहौल होता था। तपस्या भी करनी है, पढ़ाई भी करनी है, आपस में लेन देन भी करनी है, डिस्कशन भी करनी है, और फिर इसके साथ में दादी जी का एक गुण विशेष कि ये गॉडली स्टूडेंट लाइफ है। स्टूडेंट लाइफ के अंदर खेल कूद भी होना चाहिए, स्टूडेंट लाइफ के अंदर पिकनिक आदि भी होनी चाहिए, स्टूडेंट लाइफ के अंदर मेले मलाखड़े भी होने चाहिए। ये सब बातें दादी जी के अंदर आती थी। तो हम लोगों को बहुत बहुत इस तरह के एक कहें के ईश्वरी पालना के अंतर्गत, लेकिन कोई कमी नहीं छोड़ी, कभी ऐसा नहीं लगा। जैसे बच्चों के प्रोग्राम जब शुरू हुए तो बच्चों के प्रोग्राम में देखा गया छोटे बच्चे 8 वर्ष से 16 वर्ष वाले बच्चे, वो एक हफ्ते के लिए आते थे। उन बच्चों के लिए 78 से लेकर के वो उनका आना शुरू हुआ था 1978 से, तो बच्चों को इतना प्यार दादी देंगी, उनसे मिलेंगी, उनके क्लास में आएंगी, फिर उनसे रूहान करेंगी, फिर उनकी क्या डिमांड्स हैं वो सुनेंगी और खान पान में उनको रोज अच्छे से अच्छा भोजन और अच्छे से अच्छी मिठाई मिलनी चाहिए। रोज कोई ना कोई नई मिठाई उनको मिलती थी, जिसलिए बच्चे आज दिन तक याद करते दादी। और इस तरह से बच्चों का जो प्यार दादी के प्रति और दादी का प्यार बच्चों के प्रति, फिर सवाल उठता है बुजुर्गों का, तो बुजुर्गों के लिए भी दादी को खास बात, ये आज मेरे ख्याल में आ रही थी दादी जी की विशेषता कि जैसे कोई सामने जिस उम्र के भाई बहन आते थे दादी जी वो स्वरूप धारण कर लेती थी। कभी बड़े आए तो वो बड़ी बन गई, लेकिन बड़ी बन करके आने वालों का आदर करती थी। कभी हमारी कॉन्फ्रेंसेस जब होती थी उसमें बहुत बड़े बड़े वीआईपी आते, जजेस आते, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आते, तो दादी जी खास जहां वो रह रहे थे अपने ऊपर सुखधाम में या और कहीं, खास उनके पास जाकर के संत आए, क्योंकि संतों की भी बहुत सेवा की दादी ने, तो संत भी आते थे, खास उनके पास जाएंगी, उनसे मिलेंगी, फिर उनसे पूछेंगी आप आराम से हो, कोई कष्ट तो नहीं है, हर बात के लिए एक जैसे दादी शब्द दादी बड़ी बहन के लिए है, लेकिन माँ के रूप में जैसे बच्चों का ध्यान रखे, दादी का इस तरह का रोल हमने प्रैक्टिकली देखा। तो आज हम दादी जी को जब याद करते हैं तो बहुत सारी बातें आती हैं, फिर इसमें एक खास बात जो हमारे ब्राह्मण परिवार के अंदर है, जबकि हर एक को पता है कि सबका अपना अपना पार्ट है, सबके अपने अपने संस्कार हैं, फिर भी ईश्वरी सेवा के अंदर आपस में कंपटीशन बहुत होता है, और उस कंपटीशन में ये भूल जाते हैं कि हम एक ही परिवार के बाबा के बच्चे हैं, ये भूल जाते हैं कि हम एक ही ईश्वरी सेवा के लिए निमित्त हैं, और फिर उसमें थोड़ी खींचातान जो होती है, तो दादी जी के सामने वो बातें आती थी, फिर दादी कितना प्यार से हर एक को समझा करके एकता में फिर से वापस ले आती। कई बार ऐसी मीटिंग्स, कई बार ऐसी बातें देखी कि जिसमें कभी हम सोचेंगे कभी ये आपस में मिलने वाले नहीं है, लेकिन दादी जी ने प्यार की शक्ति से सबको मिला के अपने साथी बना करके ईश्वरी सेवा में हर एक की उन्नति हो, क्योंकि हर एक की उन्नति में यज्ञ की उन्नति है, हर एक की उन्नति में विश्व की उन्नति है, इस लक्ष्य को लेकर के दादी जी अपने पुरुषार्थ में भी बिजी रहती थी और इसके साथ साथ में सभी को इस तरह से गाइडेंस देती थी। और खास बात एक जो नोट की, मैंने कई बार शेयर भी की है क्लासेज में, दादी जी को हम कुछ दुनिया के समाचार आदि की चीजें बताते थे, न्यूज़पेपर ला के देंगे, कुछ और देंगे, वो थोड़ा देख लेंगी फिर रख देंगी। दादी जी को मुरली से बहुत प्यार था, हम लोग इतना अभी भी नहीं कर पाते हैं। दादी जी सारे दिन में कम से कम चार बार एक मुरली पढ़ती थी, चार बार। आप में से कौन है जो चार बार पढ़ते हैं, कोई है? अच्छा, एक बहन है इधर। तो दादी जी सुबह उठते ही बाबा की याद में बैठ करके फिर मुरली पढ़ेंगी, फिर क्लास में आकर के सुनाएंगी, फिर दोपहर को जब थोड़ा रेस्ट करने के बाद चाय वगैरह पिएंगी तो उस समय मुरली पढ़ेंगी, शाम के टाइम फिर خاص مرلی پڑھ کے پھر آرام کریں گے. تو کہا جاتا ہے جس کا مرلی سے پیار ہے اس کا مرلی دھر سے پیار ہے. تو دادی جی کی شروع سے لے کر کے جو ہم باتیں سنتے تھے, شاید آپ لوگوں کو پتا ہے یا نہیں, ان کے پتا جی نے دادی جی کو اوم منڈلی میں بھیجا ہی اسی لیے کہ دادی جی کا سری کرشن کے ساتھ بہت پیار تھا. تو دادی جی جب بابا کے پاس آئی تھیں تو بابا سے دادی جی کو سری کرشن کا ساکشاتکار ہوا تھا, اور اس کے بعد دادی نے کہا میں اور کہیں جاؤں گی نہیں, میں بابا کے پاس ہی رہوں گی. اس طرح سے انہوں نے اپنا خود ہی ڈیسیجن لے لیا, اور ان کے پتا جی نے بھی ان کو پورا سپورٹ کیا. اور دادی جی جب سے شروع ہوا یگیہ, آد سے لے کر کے جو مکھے بہنیں ہیں ان میں سے دادی جی, دیدی جی اور کچھ اور بہنیں, اس کے اندر پارٹ ان کا رہا. تو دادی جی کو تو یگ کی ہر پہلو, آد مدھیہ انت, سب پہلو بہت دھیان میں رہتے تھے. اور میں دیکھتا ہوں کہ دادی جی نے پہلے سے بھوش کو بھی دیکھ لیا تھا, تو اپنے جیتے جی انیک بھائی بہنوں کو آپ سمان بنایا. جو آج پریکٹیکلی آپ دیکھ رہے ہو بن بن بڑے بڑے ستھان سنبھال رہی ہیں بہنیں, اور خاص کر ہمارے مدھوبن میں گیان سروور میں جو سنبھال رہے ہیں وہ دادی جی سے زیادہ میں کہوں گا نزدیک رہے ہوئے ہیں, بہت پالنا ملی ہوئی ہے ان کو. آپ پریکٹیکل دیکھتے ہو دادی جی کے اویکت ہونے کے بعد آج دن تک بھی یگ کی انتی ہو رہی ہے, یگ آگے بڑھ رہا ہے, اور بھائی بہنوں کے اندر بھی نئے امنگ بھرتے جا رہے ہیں. خاص ان کے پروگرام نئے نئے بنتے رہتے ہیں, تو اس کے لیے جو نمت بہنیں ہیں ہمارے یہاں پر بھی ہیں, شانتی ون میں, پانڈو بھون میں بھی ہیں, گیان سروور میں بھی ہیں, اور ہر ایک زون کے اندر بھی ہیں, زون انچارج بہنیں بھی ہیں, تو سب نے دادی جی سے جو سمیپتا کی پالنا لی ہوئی ہے وہ سٹینڈرڈز اپنے سامنے رکھتے ہیں, اور اس سٹینڈرڈ سے ساری کاروبار کو چلا رہے ہیں اور چلاتے ہی رہیں گے. آج بھی دادی جی کے روم پر گئے تھے, وہاں تو آپس میں روح روحان ہو رہی تھی, تو یہی بات نکلی کہ دادی جی نے جس طرح سے جو پرتھا چلائی ہے وہ چلتی رہے گی, بلکہ اور ہم اس کو اچھی طرح سے امنگ الاس سے آگے بڑھائیں گے, اور سب بھائی بہنوں کو ایک سوتر میں باندھ کے رکھیں گے. تو اس طرح سے دادی جی کی تو بہت ساری باتیں ہیں جو من میں آتی ہیں کہ میں سناتا ہی رہوں, لیکن پھر بھی کچھ ایک باتیں اور ہیں. دادی جی کی کاروبار کو دیکھ کر کے ہمارے یہاں پر راجستھان کے گورنر اس سمے گیان سروور جب بنا تھا تو گیان سروور کے کارن گورنر صاحب کے سمپرک میں آنا ہوا تھا. ریڈی صاحب تھے, میرے کو نام پورا یاد نہیں آ رہا, ڈاکٹر چینا ریڈی, ہاں ڈاکٹر چینا ریڈی تھے, اور انہوں نے ہمیں گیان سروور کا کاروبار جو ہوا اس میں بہت ان کا سہیوگ ملا تھا, اور دادی جی کا جو ان کو سانیدھیہ ملا, دادی جی سے جو جس طرح کی ان کو آدھیاتمک پالنا ملی, اس کے فل سوروپ اتنے بھاوک ہوئے وہ, ان کے دل میں آیا کہ دادی جی کو ایک مانو ڈاکٹر آف فلسفی کی اپادھی ملنی چاہیے. और उन्होंने फिर जो उस समय निमित्त जो भी थे, जो अपने उदयपुर की जो यूनिवर्सिटी है, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, मेरे को नाम भूल जाता है, मेरी भी तो उम्र बड़ी हो गई है तो मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से दादी जी को डॉक्टरेट की डिग्री खास उनका फंक्शन रखवा करके, स्पेशल फंक्शन उसमें उनको सम्मानित किया गया, ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरा, जब हमारे ईश्वरी विश्वविद्यालय की तरफ से खास विदेश के भाई बहनों के सहयोग से कुछ एक बातें हुई थी, एक तो यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंसेस हुई थी माउंट आबू पर ओम शांति भवन में, और फिर उसके बाद में एक विशेष प्रोग्राम चला था जिसमें जस्ट ए मिनट, एक मिनट साइलेंस के लिए, एक मिनट साइलेंस के लिए, इस तरह से। तो वर्ल्ड में शांति लाने का एक तरीका वो नया निकाला था, और उसके फलस्वरूप एक वर्ष मनाया गया था खास यूएन की तरफ से, और उस वर्ष हमारे यज्ञ की तरफ से एक इंटरनेशनल यूएन मेडल और छह या सात मेडल रीजनल मिले थे। और दादी जी खास वो मेडल लेने के लिए यूएन में गई थी और उनको सम्मानित वहां किया गया था। और उसके बाद जो उस समय के सेक्रेटरी जनरल थे, उनको आमंत्रित करने के लिए मेरे को दादी जी ने भेज दिया था। दादी जी को निमंत्रण था लेकिन भेजा फिर मेरे को, तो हम गए और उनसे मिले और उनको निमंत्रण दिया, मैं शॉर्ट में बोल रहा हूं। और वो फिर दादी जी के निमंत्रण पर भारत में उनका सम्मान हुआ था, नेहरू पीस प्राइज मिला था उनको, पेरिस जी कुइलार उनका नाम था, दो बार वो सेक्रेटरी जनरल बने थे यूएन के। तो वो उनको जो सम्मान मिला तो उसके साथ में उनको एक विशेष ऑफर गवर्नमेंट की तरफ से मिली थी कि आप भारत में किसी एक जगह जहां भी आपकी इच्छा हो वहां आप जाएं। तो उन्होंने चूज किया था कि हम उदयपुर जाएंगे। जब उदयपुर आए तो उस समय दादी जी को इन्फॉर्म किया उन्होंने, उस समय मोहिनी बहन न्यूयॉर्क वाली भी यहीं थी, तो दादी जी के साथ में हम लोग भी गए थे और यूएन के सेक्रेटरी जनरल, उनकी युगल, उनकी बच्ची, उनका दामाद, वो सब वहां उदयपुर में पैलेस होटल में ठहरे थे। और वहां उनके साथ मुलाकात की, उनके लिए जो यहां से प्रसाद भी ले गए थे, सौगात भी ले गए थे, उन्होंने बड़े प्यार से स्वीकार की और बहुत अच्छी रूह रुहान हुई, ज्ञान की चर्चा हुई, कुछ लिटरेचर भी उनको दिया गया। तो वो एक बहुत सुंदर चीज हुई थी, जो विशेष कोई इतना बड़ा डिग्नेटरी खास आए भारत में और वो दादी जी को आमंत्रित करे मिलने के लिए, क्योंकि माउंट आबू में आना मुश्किल था उस समय। तो इस तरह से हर लेवल की दादी जी के द्वारा सेवा हुई, और मैं समझता हूं कि वो एक हम सब के लिए स्टैंडर्ड बन गए हैं कि जैसे दादी जी ने सेवा की है, जैसे दादी जी निमित्त बन के करती रही, जैसे दादी जी ने अपना ये बड़ा संगठन इतना पावरफुल बना दिया है, हमें इसको मजबूत बनाए रखना सिर्फ नहीं है بلکہ اس کو اور آگے بڑھانا ہے، یہی دادی جی کے پرتی سب سے بڑی شردانجلی ہوگی۔ تو آج کے دن خاص دادی جی کے سمرتی دیوس پر ہم دادی جی کو شت شت سنیہ بھری پرنام کرتے ہیں، اور خاص یہ وشیش ایک یوں کہیں کہ دادی جی کے لیے ہماری ایک ہی بھاونا ہے، جیسے وہ ہر سال آ کے ہم سے ملتی آج بھی ملیں، اور ہم سب دادی جی سے سنمکھ ان کے کچھ مخاربین سے دو شبد سنیں، کیونکہ خاص سب کو پتہ ہے اسی وشیش کاریکرم کے لیے ہماری آدرنیہ دادی گلزار جی پرسوں یہاں پہنچ گئی ہیں، اور اوشیہ ہم دادی سے ملیں گے۔ اوم شانتی، اوم شانتی، اوم شانتی۔ ابھی دو منٹ سائلنس۔
ہم کو میٹھا